بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتا، آج بھی اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کی پوتر آیتوں کی تلاوت اور ان کے انواد سے کریں گے۔ آج آپ سورہ آلہ کی آیت کرمانک 1 سے 17 تک کی تلاوت اور اس کا انواد سنیں گے۔ قاری ہیں سورگی محمد صدیق منشاوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا والذی اخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير
اللہ العظیم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے، ہی پیغمبر اپنے سروچ پالنہار کے نام کا گنگان کیجئے، جس نے پیدا کیا پھر ٹھیک ٹھاک کیا، جس نے بھاگیہ نردھارت کیا پھر مارگ دکھایا، جس نے ونسپتی اگائی پھر اسے سوکھا اور کالا بنا دیا، پھر ہم آپ کو شیگر ہی اس پرکار قرآن پڑھائیں گے کہ پھر آپ بھولیں گے نہیں، سوائے یہ کہ ایشور ہی یہ چاہے کہ نسندیہ وہ ہر سپشٹ اور چھپی بات کو جانتا ہے، اور ہم آپ کو ہر بھلے کار کے لیے تیار کر دیں گے، اتہ نصیحت کیجئے، یدی نصیحت لاپرد ہو، اور شیگر ہی ایشور سے ڈرنے والا ویکتی نصیحت حاصل کر لے گا، کنتو اتین دربھاگ والا اس سے کترائے گا وہی جو بڑی آگ میں گر پڑے گا، پھر وہ اس میں نہ تو مرے گا نہ ہی جیے گا۔ نشچت روپ سے جس نے اپنے آپ کو پوتر بنا لیا وہ سفل ہو گیا، اور جس نے اپنے پالنہار کے نام کا اسمرن کیا پھر نماز ادا کی۔ نہیں، بلکہ تم تو سانسارک جیون کو پراتھمکتا دیتے ہو، جبکہ پرلوک ادھک اتم اور شیش رہنے والا ہے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ شروتاؤں، کارکرم میں آپ سبھی کا سواگت ہے۔ آج شنیوار ہے، جنوری کی 15، جمادی الثانی کی 12 اور دئی ماہ کی 25 تاریخ۔ کارکرموں میں آپ پہلے وشو سماچار سنیں گے، اس کے بعد راجنیتک چرچا کا دینک کارکرم پیش کیا جائے گا۔ راجنیتک چرچا کے دینک کارکرم کے اوپرانت ایران بھرمڑ نامک ساپتاہک کارکرم آپ سن سکیں گے۔ اپنی سبھا میں ہم آپ کو انت میں سنوائیں گے ایک انیہ ساپتاہک کارکرم نیا سویرا۔ تو شوتاؤ، یہ تھی روپ ریکھا۔ اب کچھ ہی چھڑوں میں ریڈیو تہران سے وشو سماچار پیش کیے جائیں گے۔ یہ تہران ہے، اب آپ وشو سماچار سنیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آج کے مکھیہ سماچاروں کا سارانش۔ ایران کے ودیش منتری نے چین کے ساتھ 25 ورشہ سمجھوتے پر عمل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وینا میں وارتا کرنے والے پرمانو وارتا کار وچار ومرش کے لیے اپنی راجدھانیوں میں واپس گئے ہیں۔ امریکہ کے نئے پرتبندھوں کے باوجود اتری کوریا نے پھر میزائل کا پریکشن کیا ہے۔ بھارت میں کورونا کے نئے کیسوں میں تیزی سے وردھی ہو رہی ہے۔ اور اب آپ مریم مہردادی اور قائم رضوی سے وستار سے سماچار سنیے۔
ودیش منتری نے چین کے ساتھ 25 ورشی سمجھوتے پر عمل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایران کے ودیش منتری حسین امیر عبداللہیان نے اپنی چینی یاترا کی سماپتی پر کہا ہے کہ دونوں دیشوں کے بیچ یہ سہمتی بنی ہے کہ 25 ورشی سمجھوتے پر عمل شروع ہو جانے کا اعلان کر دیا جائے۔ چین کے ودیش منتری نے اپنی وستت ملاقات کے بعد ودیش منتری امیر عبداللہیان نے کہا کہ میں 25 ورشی سمجھوتے کو لاگو کرنے اور شیتری و انتراشٹری وشیوں کے بارے میں ایران کے راشٹرپتی کا لکھت سندیش چین کے راشٹرپتی کے لیے لایا۔ انہوں نے کہا کہ وینا میں جاری وارتا میں چین کے پرتنیدھی نے روس کے پرتنیدھی کے ساتھ مل کر بہت سارتھک بھومیکا نبھائی، اور ایران کے پرمانو ادھیکاروں کے سمرتھن تتھا ایران پر لگے پرتبندھ ہٹوانے کی دشا میں ان کا یوگدان سراہنیہ ہے۔ ایران اور چین کے بیچ اس مہتوپورن سمجھوتے کی بات چین کے راشٹرپتی کی جنوری 2016 میں تہران کی یاترا سے شروع ہوئی تھی۔ اس کے بعد دونوں دیشوں کے بیچ مسودے اور دستاویزوں کے کئی بار کے آدان پردان کے بعد مارچ 2021 میں دونوں دیشوں کے ودیش منتریوں نے سمگر سہیوگ کے دستاویز پر ہستاکشر کیے تھے۔ یہ دستاویز ایران اور چین کے بیچ سمگر سہیوگ کا روڈ میپ ہے، جس کے تحت دونوں دیشوں کے بیچ درجنوں سمجھوتے ہوں گے۔
ایران پر لگی امریکہ کی ظالمانہ پابندیاں ہٹوانے کے لیے وینا میں جاری وارتا اب اس موڑ پر پہنچے ہیں کہ وارتا کار ٹیموں کے پرمکھوں نے اپنی اپنی راجدھانی کی اور واپسی کی ہے، تاکہ نئی استھتی کے بارے میں ورشٹھ ادھیکاریوں سے وچار ومرش کریں، جبکہ وشیشوں کے استر پر وینا میں وارتا کا کرم لگاتار جاری ہے۔ مارتا کے بارے میں یورپی سنگھ، روس اور ایران کی اور سے اتساہ جنک بیان آئے ہیں۔ مارتا سے جڑے ستروں کے بیانوں میں پرگتی، سکاراتمک اور پرکریا جیسے شبد آ رہے ہیں۔ وہیں وارتا کے مدھم رفتار کا مدعا بار بار پشچمی دیشوں کی اور سے اٹھایا جا رہا ہے۔ اسلامی گنتنتر ایران کے ودیش منتری حسین امیر عبداللہیان نے کہا کہ ہمیں واشنگٹن کے انوپچارک پتر ملے ہیں جن میں بڑی اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن ویوہارک روپ سے قدم اٹھائے جانے کی ضرورت ہے۔ کچھ سوتر کہتے ہیں کہ وارتا اب ڈیٹیل والے چرن میں پہنچی ہے اور بیورے پر بات ہو رہی ہے۔
ایران کے راشٹرپتی ابراہیم رئیسی کے آرتھک صلاح کار نے کہا ہے کہ اب زور زبردستی کا دور ختم ہو چکا ہے۔ محسن رضائی نے نکاراگوا میں کہا ہے کہ اب دھونس، زور زبردستی اور پرتبندھوں کا زمانہ ختم ہو گیا ہے۔ محسن رضائی نے کہا کہ ایران اور نکاراگوا میں سامراجیواد تتھا ورچسواد کے ورودھ سنگھرش میں بہت ادھک سمانتائیں پائی جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب جبکہ شترو نے اپنی ساری شمتا کو پرتیرودھ کرنے والے راشٹروں کے ورودھ مقابلے میں جھونک دیا ہے، تو ایسے میں ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ محسن رضائی کا کہنا تھا کہ سامراجواد کا ورودھ کرنے والی پرتیرودھک شکتیوں کو جاننا چاہیے کہ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے میں وہ شڈینتروں اور پرتبندھوں کے مادھیم سے اپنے لکشوں تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ ایرانی راشٹرپتی کے آرتھک صلاح کار نے نکاراگوا کے ورودھ امریکی پرتبندھوں کی نندا کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب زور زبردستی کا دور نہیں ہے، اس لیے ہم کو مل جل کر پرتیرودھ کرنا چاہیے۔
سنیکت راشٹر سنگھ کی سرکشا پریشد نے بالکل ورودھاباسی رویہ دکھاتے ہوئے امارات کے اس جہاز کو چھوڑے جانے کی مانگ کی ہے جسے یمن کی سینا نے سینیہ اپکرنوں کے ساتھ اس سمے ضبط کر لیا تھا جب وہ یمن کی جل سیما میں غیر قانونی روپ سے داخل ہوا تھا۔ سرکشا پریشد کے سدسیوں نے ایک بیان جاری کر کے یمن کے تٹ پر 2 جنوری 2022 کو امارات کے فلیگ کے ساتھ یاترا کرنے والے سمندری جہاز کو روکے جانے کی نندا کی اور اس سینک جہاز کو اس کے کرمی دل کے ساتھ تتکال رہا کیے جانے کی مانگ کی۔ سرکشا پریشد نے سنکٹ کے سمبندت پکشوں سے مانگ کی ہے کہ وہ اس معاملے کو جلدی حل کریں اور عدن کی کھاڑی اور لال ساگر میں سمندری یاتایات پوری آزادی کے ساتھ جاری رہنا چاہیے۔ سرکشا پریشد نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کہی کہ اس جہاز پر سینک اپکرن لدے ہوئے تھے اور وہ غیر قانونی روپ سے یمن کی جل سیما میں داخل ہوا تھا۔ سرکشا پریشد کے سدسیوں نے یمن کے سنکٹ کے سبھی پکشوں سے کہا کہ وہ یمن میں تناؤ کم کریں اور ویاپک راجنیتک وارتا کے لیے سنیکت راشٹر سنگھ کے وشیش دوت سے سہیوگ کریں۔
اتیاچار کے ورودھ میں بحرینیوں کو پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے۔ اسلامی پرتیرودھ آندولن نوجبا کے پرمکھ نے کہا ہے کہ بحرین واسیوں کو اتیاچار کا ورودھ کرنے کے کارن پھانسی کی سزا سنائی جا رہی ہے۔ نصر الشمری نے کہا ہے کہ مانواادھیکاروں کی رکشا کا دعویٰ کرنے والوں کی اور سے بحرین اور یمن کے بارے میں جہاں پشچمی دیش مون دھارن کیے ہوئے ہیں، وہیں پر اتیاچار کا ورودھ کرنے کے کارن بحرین کے لوگوں کو پھانسی کی سزا سنائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بحرینیوں کا گناہ اتیاچار کا ورودھ کرنا ہے۔ نوجبا کے پرمکھ کا کہنا تھا کہ سنیکت راشٹر سنگھ اور اس کی سرکشا پریشد نے یمن اور بحرین کی گھٹناؤں کے بارے میں کوئی پربھاوی کام نہیں کیا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر پوری دنیا یمنیوں اور بحرینیوں پر ڈھائے جانے والے اتیاچاروں کو بھلا دے، پھر بھی ایران، عراق اور لبنان کے شیعہ مسلمان اس کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب کے ایک نیالے نے ملک فہد نامک ایک پل کو نشٹ کرنے کا آروپ لگاتے ہوئے بحرین کے 2 یوواؤں کو حال ہی میں پھانسی کا آدیش سنایا ہے۔ مانواادھیکار سنگٹھنوں نے اس آدیش کا کڑا ورودھ کیا ہے۔
اتر کوریا نے شکروار کو نئے پرتبندھوں کی اویلنا کرتے ہوئے 2 میزائلیں داغ کر امریکہ کو بڑا جھٹکا دیا ہے۔ ستھانیہ میڈیا نے شنیوار کو اس کی جانکاری دی ہے۔ دکشن کوریا کی سینا نے کہا کہ اتر کوریا کے دوارا شکروار دوپہر 2 چھوٹی دوری کی بیلسٹک میزائلوں کا پرکشپن کیا گیا تھا۔ دونوں میزائلیں ٹرین کے مادھیم سے داغی گئی تھیں۔ 5 جنوری اور 11 جنوری کو ہائپر سونک میزائلوں کے 2 سفل پریکشنوں کے بعد اسی مہینے اتر کوریا کا یہ تیسرا میزائل پریکشن ہے۔ परीक्षण के कुछ ही घंटों बाद उत्तर कोरिया ने संयुक्त राज्य अमेरिका पर नए प्रतिबंधों को तोड़ने के लिए उकसाने का आरोप लगाया। इससे पहले उत्तर कोरिया ने सितंबर 2021 में पहली बार किसी ट्रेन से मिसाइलों का परीक्षण किया था। सियोल के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि शुक्रवार के प्रक्षेपण ने 36 किलोमीटर की ऊंचाई पर 430 किलोमीटर अर्थात 270 मील की दूरी तय की। उत्तर कोरिया ने चेतावनी दी है कि अगर अमरीका अपने टकराव वाले रुख पर बाकी रहता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
दर्जनों पूर्व अधिकारियों, राजनेताओं और प्रतिष्ठित हस्तियों ने भारत तथा पाकिस्तान से आग्रह किया है कि वे मुद्दों के समाधान के लिए वार्ता की मेज पर आएं। कम से कम 50 राजनेताओं, पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों और शांति कार्यकर्ताओं ने भारत और पाकिस्तान दोनों देशों से कहा है कि वे टिकाऊ शांति के लिए काम करें। भारतीय शांति कार्यकर्ता ओम प्रकाश शाह एक किताब की शक्ल में 50 लेखों का एक संग्रह पेश करने जा रहे हैं, जिसका मकसद शांति की पुरजोर मांग करना है। इस किताब में ये मांग की जाने वाली है कि दोनों देश कम से कम बातचीत जरूर शुरू कर दें।
भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत सहित 14 लोगों के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत की जांच की आरंभिक रिपोर्ट सामने आ गए हैं, जिसमें बताया गया है कि तकनीकी खराबी, साजिश या गफलत की वजह से ये दुर्घटना नहीं हुई है, बल्कि खराब मौसम के कारण ये दुखद वाकया हुआ। भारतीय मीडिया में प्रकाशित खबर के अनुसार तमिलनाडु के इलाके में मौसम अचानक बदल गया, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर बादलों में दाखिल हो गया था और फिर तबाह हो गया। भारतीय रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मौसम बदल जाने की वजह से पायलट रास्ता भटक गया और अपनी दिशा दुरुस्त नहीं रख पाया।
विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि कोरोना की दृष्टि से भारत फिर गंभीर खतरे की तरफ बढ़ रहा है। कोरोना के खतरे के बारे में इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण के बीच भारत एक बार फिर उसी खतरे की तरफ बढ़ रहा है, जिसका मंजर पिछले साल वहां पर देखा गया था। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के लिए चेतावनी जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में पिछले साल अप्रैल जून में बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मौत कोरोना के डेल्टा वेरियंट की वजह से हुई थी। इस वेरियंट ने आर्थिक हालात को भी प्रभावित किया था। अब भारत में दोबारा ठीक वैसे ही हालात बनते जा रहे हैं, ऐसे में भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है।
संयुक्त किसान मोर्चे का कहना है कि सरकार की वादा खिलाफी को लेकर किसान पूरे देश के जिला मुख्यालयों, ब्लॉक मुख्यालयों और तहसीलों पर प्रदर्शन करेंगे और प्रधानमंत्री के पुतले फूंकेंगे। संयुक्त किसान मोर्चे ने सरकारों पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। SKM ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार फिर केंद्र और राज्य सरकारों पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। हिंदुस्तान के अनुसार SKM या संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकार वचनों को पूरा नहीं कर रही है। इस संगठन के अनुसार भारत सरकार द्वारा 3 विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद वैसे तो किसान आंदोलन समाप्त हो गया है, लेकिन किसानों की कई समस्याएं अब भी बाकी हैं। इसी के साथ रेडियो थेरान से समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
श्रोताओ, राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए। IRIB के पत्रकार के सवाल के जवाब में रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने कहा है कि ईरान के राष्ट्रपति रईसी का सफर इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि दोनों देशों के राष्ट्रपतियों की आमने सामने की बातचीत का सिलसिला, जो कोरोना की वजह से रुका हुआ था, आगे बढ़ेगा और द्विपक्षीय और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों को एजेंडे में जगह मिलेगी। मलेशिया के इस्लामी संगठनों के सदस्यों ने कुआलालंपुर स्थित ब्रिटिश उच्चायुक्त के सामने फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किया है। इस बार प्रदर्शनकारियों का गुस्सा ब्रिटेन के खिलाफ फूट पड़ा है, जिसने ज़ाहिर शासन के समर्थन में फिलिस्तीन के इस्लामी प्रतिरोधी संगठन हमास को आतंकवादी गुट करार दे दिया है। मलेशिया के इस्लामी संगठनों की सलाहकार परिषद के प्रमुख मोहम्मद अजमी अब्दुल हमीद के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने ब्रिटेन के इस फैसले की कड़ी आलोचना की और कहा कि हमास आतंकवादी नहीं बल्कि अवैध ज़ाहिर शासन असली आतंकवादी है। श्रोताओं, भारत नियंत्रित कश्मीर में भी कोरोना का कहर जारी है। गत 24 घंटे में पूरे भारत में 260,000 से अधिक लोग कोरोना से प्रभावित हुए हैं। भारत नियंत्रित कश्मीर के समस्त अस्पतालों में इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है और लोगों से अपने दुकानों को बंद करने के लिए कहा गया है। IRIB के पत्रकार के सवाल के जवाब में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ ने कहा है कि ईरान के राष्ट्रपति रईसी का सफर इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि दोनों देशों के राष्ट्रपतियों की आमने सामने की बातचीत का सिलसिला, जो कोरोना की वजह से रुका हुआ था, आगे बढ़ेगा और द्विपक्षीय और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों को एजेंडे में जगह मिलेगी। सैयद अली दारावी की रिपोर्ट पेश करें साथ ही अहमद अब्बास।
रूस के विदेश मंत्री की सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो कोरोना महामारी की वजह से फिजिकल और वर्चुअल दोनों रूपों में आयोजित हुई, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर केंद्रित रही। रूस और नेटो के बीच जारी तनाव, सुरक्षा और रूस की सीमाओं की ओर नेटो के विस्तार को रोकने के विषय पर वियना में नाकाम बैठक, इसी तरह ईरान के राष्ट्रपति आयतुल्ला रईसी की प्रस्तावित मॉस्को यात्रा इनमें प्रमुख थे। IRIB के पत्रकार के सवाल के जवाब में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ ने कहा कि ईरान के राष्ट्रपति रईसी का सफर इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के आमने सामने की बातचीत का सिलसिला, जो कोरोना की वजह से रुका हुआ था, आगे बढ़ेगा और द्विपक्षीय व क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दे एजेंडे में शामिल किए जाएंगे और उन पर बातचीत का दौर होगा। लावरोफ ने कहा कि ईरान में नई सरकार बनी है तो एक बार फिर महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होना उचित है। दोनों राष्ट्रपतियों के बीच कई बार टेलीफोन पर वार्ताएं हुई हैं, लेकिन आमने सामने की वार्ता हमेशा बहुत प्रभावी रहती है। लावरोफ ने नेटो के साथ जारी रूस के तनाव पर बोलते हुए कहा कि अमरीका और नेटो की हरकतों पर रूस का संयम समाप्त हो चुका है और अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि रूस को अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करना अच्छी तरह आता है और हम पश्चिम के वादों के इंतजार में खामोश होकर नहीं बैठेंगे बल्कि अपनी ओर से हम कदम उठाएंगे। लावरोफ ने कहा कि पश्चिम के साथ हमारे संबंध खराब हो रहे हैं। पश्चिमी देशों ने नेटो का विस्तार न करने के अपने वादे पर अमल नहीं किया है। नेटो अब भी नए सदस्य शामिल करने पर जोर दे रहा है। सर्गेई लावरोफ ने रूस की सीमा के करीब अमरीका के नेतृत्व में नेटो की दुश्मनी की गतिविधियों का हवाला देते हुए कहा कि पश्चिमी देशों ने अपने वादों पर अमल नहीं किया और जरूरी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी जिम्मेदारी पर अमल करे। मॉस्को से IRIB के लिए सैयद अली दारावी की रिपोर्ट।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
मलेशिया के इस्लामी संगठनों के सदस्यों ने कुआलालंपुर स्थित ब्रिटिश उच्चायुक्त के सामने फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किया है। इस बार प्रदर्शनकारियों का गुस्सा ब्रिटेन के खिलाफ फूट पड़ा है, जिसने ज़ाहिर शासन के समर्थन में फिलिस्तीन के इस्लामी प्रतिरोधी संगठन हमास को आतंकवादी गुट करार दे दिया है। मलेशिया के इस्लामी संगठनों की सलाहकार परिषद के प्रमुख मोहम्मद अजमी अब्दुल हमीद के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने ब्रिटेन के इस फैसले की कड़ी आलोचना की और कहा कि हमास आतंकवादी नहीं बल्कि अवैध ज़ाहिर शासन असली आतंकवादी है। इस्माइलपुर हाजी की रिपोर्ट पेश करने साथ ही सैयद मिसाम अब्बास।
मलेशिया के इस्लामी संगठनों के सदस्यों ने कुआलालंपुर स्थित ब्रिटिश उच्चायुक्त के सामने फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किया है। इस बार प्रदर्शनकारियों का गुस्सा ब्रिटेन के खिलाफ फूट पड़ा है, जिसने ज़ायोनी शासन के समर्थन में फिलिस्तीन के इस्लामी प्रतिरोधी संगठन हमास को आतंकवादी गुट करार दे दिया है। मलेशिया के इस्लामी संगठनों की सलाहकार परिषद के प्रमुख मोहम्मद अजमी अब्दुल हमीद के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने ब्रिटेन के इस फैसले की आलोचना की और कहा कि हमास आतंकवादी नहीं है बल्कि अवैध ज़ायोनी शासन असली आतंकवादी है।
We are trying to show to the British government.
हम सभी लोग ब्रिटेन को ये चेतावनी देने आए हैं कि असली आतंकवादी अवैध ज़ायोनी शासन है, न कि हमास। असली अपराधी ज़ायोनी शासन है, जिस पर प्रतिबंध भी लगना चाहिए और जिसे सजा भी मिलनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने जोर देकर कहा कि पीड़ित फिलिस्तीनी जनता के कानूनी अधिकारों की रक्षा करना फिलिस्तीन के इस्लामी प्रतिरोधी संगठन के गठन का मूल उद्देश्य है।
very, very wrong.
हमास को आतंकवादी बताना एक बहुत बड़ी गलती है। हमास गजा पट्टी और फिलिस्तीन के पीड़ित लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है। हम ब्रिटेन को ये संदेश देना चाहते हैं कि दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप न करें। फिलिस्तीन की जनता ने खुद हमास का चयन किया है, हमें उनके चयन का सम्मान करना चाहिए। कुआलालंपुर स्थित ब्रिटिश उच्चायुक्त के सामने मलेशिया के इस्लामी संगठन के सदस्यों ने धरना प्रदर्शन किया है और ब्रिटेन के इस अत्याचारी कदम की निंदा की है। इस्माइलपुर हाजी, IRIB, कुआलालंपुर।
श्रोताओं, भारत नियंत्रित कश्मीर में भी कोरोना का कहर जारी है। गत 24 घंटे में पूरे भारत में 260,000 से अधिक लोग कोरोना से प्रभावित हुए हैं। भारत नियंत्रित कश्मीर के समस्त अस्पतालों में इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है और लोगों से अपने दुकानों को बंद करने के लिए कहा गया है।
पूरे भारतवर्ष में कोरोना वायरस का कहर जारी है और पिछले 24 घंटों में 261,000 के लोग इससे प्रभावित हुए हैं। प्रशासन ने विभिन्न स्टेट्स में अलग अलग तौर पर आदेश देकर इस महामारी से बचने के लिए आदेश जारी किए हैं। भारत के साथ साथ भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर में भी प्रशासन ने इस महामारी से बचने के लिए कई ऑर्डर पास किए हैं। तमाम जितने भी अस्पताल हैं उनमें इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। डॉक्टर हेल्थ ने पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा कि जो भी अस्पताल में आएगा उसके लिए रेड टेस्ट जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा कि रैपिड के बगैर किसी भी बीमार को नहीं देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि ये निर्णय उन्होंने इसलिए लिया ताकि आम लोग इसे ज्यादा से ज्यादा प्रभावित न हो। उन्होंने लोगों पर भी बल दिया कि वो इस महामारी से बचने के लिए हेल्थ एडवाइजरी पर मुकम्मल तौर पर अमल करें। उन्होंने इस अवसर पर कहा,
नहीं नहीं देखिए, ये हर एक हॉस्पिटल के लिए है कि जो भी पेशेंट या अटेंडेंट आए, ओपीडी में आए, आईपीडी में आए, एक तो पूरा SOPs का उसको ख्याल रखना है, मास्क लगाना जरूरी है और टेस्ट उनका होना बहुत जरूरी है। टेस्ट करने में हमें रेड करने में कोई ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। बाकी जब अगर कोई इमरजेंसी पेशेंट होगा उसको हम ऐसे ही अटेंड करेंगे, लेकिन जो अटेंडेंट्स हैं विजिटर्स हैं उनको मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है।
सर, कश्मीर के पेशेंट्स की रिवायत रही है कि जब एक पेशेंट होता है उसके साथ चार चार बंदे आते, उसके हवाले से पता है क्या कुछ कदम?
जी जी हाँ हाँ, आप देखिए कि जैसा हमने वो मैटरनिटी हॉस्पिटल में मैंने वहाँ काम किया है, वहाँ ज़्यादा जो मायके वाले भी आते हैं, ससुराल वाले भी आते हैं, वो कहते हैं हम ही पीछे हो जाएंगे, ये कहते हैं हम। मेरी एक रिक्वेस्ट आज ये रहेगी लोगों से कि आज वो ना करें, जो अगर कोई खबर पोशी के लिए आना है किसी का हाल चाल पूछने की तो उसके घर ही जाए, वो बेहतर रहेगा। आज अगर आज जो देखे इतनी अच्छी फैसिलिटी आप فون پہ خبر اتر پوچھ سکتے ہو، واٹس ایپ کال پہ خبر اتر پوچھ سکتے ہو۔ میری لوگوں سے یہی گزارش رہے گی، معتبانہ گزارش رہے گی، ہینڈ فولڈ ریکویسٹ رہے گا کہ اسپتالوں میں ان نیسریلی نہ جائے، جو وزٹر ہے وزٹر ان نیسریلی نہ جائے۔ اگر ضروری ہے تو ایک اٹینڈنٹ ہو، اور اٹینڈنٹ کا بھی ماسک ہونا بہت ضروری ہے۔ باقی وزٹر سے ہی گزارش ہے کہ خاص کر چاہے چھوٹے بچے ہو یا بزرگ ہو، ان کو ہاسپٹل ان نیسریلی نہ لائے۔ باقی علاج ملاج کے لیے تو پیشنٹ کو آنا ہے اور ایک اٹینڈنٹ ساتھ ہوتا ہی۔ اب دیکھیے کہ اومیکران جیسا کہ پتہ ہے اس کا پھیلاؤ جو زیادہ ہے، انفیکٹیوٹی زیادہ ہے، اسی لیے ہم یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس پہ جو پریونٹیو میجرز لینے ہیں وہ زیادہ ہی سختی سے لینے ہیں، بہت ضروری ہے۔ خاص کر کے وہی بیسک تین چیز، کوئی زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے، وہی ایک ماسک، ہینڈ ہائجین، سوشل ڈسٹینس، ان تین چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور انشاءاللہ وہ ہمیں بچا۔
آواجاہی پر اس لیے روک لگائی گئی تاکہ اس مہاماری سے بچا جا سکے۔ سبتی محمد حسن، ریڈیو تہران، سرین۔
یہ تہران ہے اسلامی گنتنتر ایران کی آواز۔ شروع ہماری سبھا کا انتم کاریکرم ہوگا نیا سویرا، پر اس سے پہلے آپ سنیے دوسرا ساپتاہک کاریکرم ایران بھرمن۔
ایران بھرمڑ۔
دوستو، کارکرم ایران بھرمن میں آپ کا سواگت ہے۔ آج ہم کردستان پرانت کے سندر و ایتہاسک شہر مریوان کی سیر کریں گے۔ سواتی اور اختر عباس کا سلام سویکار کریں۔
مریوان شہر اتر اور پشچم میں عراق کی سیما سے لگا ہوا ہے۔ یہ سمندر کی سطح سے 1272 میٹر کی اونچائی پر استھت ہے۔ یہ پرانت کے کیندری شہر سنندر سے 128 کلومیٹر پشچم میں استھت ہے۔ یہ ایران کے ان علاقوں میں سے ایک ہے جہاں سب سے زیادہ بارش ہوتی ہے، اسی لیے پورا کھیتر اونچے پہاڑوں سے لے کر ڈھلانوں، گھاٹیوں اور میدانوں تک ہرے بھرے پیڑ پودوں اور ونسپتیوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ اس کھیتر کے سب سے پرسدھ جنگلی ورکشوں میں جنگلی ناشپاتی، اخروٹ، بادام، جنگلی پستہ اور بلوط کا نام لیا جا سکتا ہے۔ اپیکشاکرت اونچے پہاڑوں اور اونچے نیچے علاقوں اور پرچور ماترا میں ورشا کے کارن یہاں کئی ندیاں بہتی ہیں۔ گھماؤدار ندیوں، ہریالی اور ونسپتیوں نے سگھد اور ادبھت درشیہ اتپن کر دیے ہیں۔ مریوان علاقے میں کئی پروتیہ چوٹیاں بھی ہیں۔
مریوان شہر کے اتر میں چہل چشمے پہاڑ استھت ہے، جس کی اونچائی سمندر کی سطح سے 3140 میٹر ہے۔ اس پہاڑ میں 20 چوٹیاں ہیں، اس کے چاروں اور کئی گاؤں استھت ہیں۔ سندر اور منموہک درشیوں کے ساتھ سندر پرکرتی، طرح طرح کے پھول اور پودوں کے انوٹھے سنگرہ نے اس علاقے کو ایران کے بہترین پریٹن استھلوں میں سے ایک بنا دیا ہے۔ پورے دیش سے پرکرتی پریمی اور پروتاروہی گرمیوں کے موسم میں یہاں کی یاترا پر جاتے ہیں۔
پہاڑی کھیتروں کی بھوگولک وشیشتاؤں، اپیوکت ونسپتیوں اور ندیوں اور جل سنسادھنوں کے کارن مریوان علاقہ وبھن پرکار کے جیووں اور پکشیوں کے لیے ایک اپیوکت ٹھکانہ بن گیا ہے۔ اسی وجہ سے اسے شکار کے لیے کردستان کے سب سے ادھک لوکپریہ کھیتروں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ شکار کے لیے لوکپریہ اس کھیتر میں وبھن پرکار کے جیو اور جانور رہتے ہیں، جن میں مانساہاری، استنداری اور شاکاہاری استنداری شامل ہیں۔ کھیتر میں سب سے مہتوپورن جانور تیندوے، بھیڑیے، لومڑی، میڑے، بھیڑ، بھورے بھالو اور سور شامل ہیں۔ الیکھنیے کہ تیتر، فاختہ، چیل، بطخ اور کئی انیہ پرکار کے پکشی بھی اس کھیتر میں پائے جاتے ہیں۔ Thank you.
प्राचीन समय से ही मरीवान की अर्थव्यवस्था प्राकृतिक स्रोतों, चरागाहों और जंगलों पर आधारित रही है। यही वजह है कि यहाँ की अर्थव्यवस्था और यहाँ के लोगों की आजीविका में पशुपालन और पशुधन उत्पादों के आदान प्रदान ने निर्णायक भूमिका निभाई है। कुछ इलाकों कृषि, बागवानी, हस्तशिल्प को क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में एक पूरक गतिविधि के रूप में माना जाता है। वर्तमान में इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियों में कृषि और पशुपालन है। महत्वपूर्ण कृषि उत्पादों में तंबाकू और अनाज है। साइड आर्थिक गतिविधि के रूप में हस्तशिल्प, विशेष रूप से कालीन की बुनाई, इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका है।
दोस्तों, यहाँ ये जानना उचित होगा कि मरीवान ईरान के कुर्दिस्तान प्रांत में स्थित है और इसकी संस्कृति और इतिहास काफी पुराना और उज्ज्वल रहा है। इस क्षेत्र के ऐतिहासिक स्मारक और सांस्कृतिक स्मारक इस बात के सबूत हैं। इस क्षेत्र के प्राचीन स्थल 3000 साल पुराने इतिहास की गवाही देते हैं, क्योंकि मरीवान शहर 30 फ़ौन से तख्ते सुलेमान शहर के रास्ते में स्थित है। इसीलिए आशकानियान और सासानी युग में इस पर ध्यान केंद्रित किया गया था।
उसके बाद के दौर में मरीवान शहर इस इलाके का केंद्र होने के अलावा विभिन्न क्षेत्रों के बीच संपर्क की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा। इसलिए हमेशा से इस क्षेत्र के शासकों ने इस पर ध्यान दिया। मरीवान क्षेत्र में ऐतिहासिक स्मारक और प्राकृतिक आकर्षण पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहे हैं। मरीवान शहर एक पहाड़ की तलहटी में और मरीवान विशाल मैदान के निकट स्थित है। मरीवान शहर के पश्चिम में एक स्थित जरीवार झील ने इस शहर को एक विशेष सुंदर दृश्य प्रदान किया है और इसे मनोरंजन के एक सुंदर स्थल में बदल दिया। यहाँ मरीवान के कुछ ऐतिहासिक और प्राकृतिक आकर्षणों से परिचित होना उचित होगा।
दोस्तों, कले इमाम एक मूल्यवान ऐतिहासिक धरोहर है जो मरीवान शहर के पूर्व में 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस किले का निर्माण 945 हिजरी कमरी में किया गया था। आज किले के पानी के भंडारण की सीढ़ियों के अवशेष जो पत्थर से उकेर कर बनाए गए हैं, किले की ईंट की इमारत में देखे जा सकते हैं। बाद में कुर्दिस्तान के गवर्नरों ने कले इमाम की मरम्मत की और उसका उपयोग किया। किले के निकट लाल मस्जिद नामक एक मस्जिद के अवशेष देखे जा सकते हैं। ऐतिहासिक गारान ब्रिज भी कुर्दिस्तान प्रांत के ऐतिहासिक स्मारकों में से एक है जो मरीवान शहर के पास स्थित है। इसे एक ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल माना जाता है।
इस पुल में 2 हेक्सागोनल स्पैन हैं और नदी के किनारों की ऊंचाई से जुड़े 2 स्तंभ हैं। इसमें 3 स्पैन हैं जो 42 मीटर लंबे, 9.5 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे हैं। इसके निर्माण में ईंटों और पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है।
दोस्तों, ऐतिहासिक धरोहरों के अलावा मरीवान सीमावर्ती बाजार भी इस क्षेत्र का एक आकर्षक पर्यटन स्थल माना जाता है। इस बाजार में लोगों की काफी भीड़ रहती है। ये मरीवान शहर से पश्चिम में 15 किलोमीटर के फासले पर स्थित है। विभिन्न देशों से आयातित वस्तुओं के अलावा इस बाजार में विभिन्न प्रकार के घरेलू उत्पाद जैसे कि हस्तशिल्प, कपड़े, गहने और कई अन्य उत्पाद खरीदे जा सकते हैं, जो कई घंटों तक पर्यटकों और यात्रियों के ध्यान का केंद्र बने रह सकते हैं।
मरीवान क्षेत्र के सबसे प्राकृतिक आकर्षणों में से एक जरीवार झील है। 1389 हिजरी शमसी में इसे ईरान के राष्ट्रीय धरोहरों में दर्ज कर लिया गया था। इस झील को मरीवान झील के नाम से भी जाना जाता है। ये कुर्दिस्तान प्रांत के महत्वपूर्ण तालाबों, प्राकृतिक और अद्वितीय आकर्षणों में से एक है। जरीवार झील समुद्र की सतह से 1285 मीटर की ऊंचाई पर और मरीवान शहर से 2 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। झील का पानी मीठा है और जो झील के तल में स्थित पानी के स्रोतों से आता है। झील हरे भरे मैदानों से घिरी हुई है और आसपास के पहाड़ जंगलों से भरे हुए हैं।
दोस्तों, जरीवार झील की लंबाई लगभग 5 किलोमीटर और चौड़ाई 1.6 किलोमीटर है। अलग अलग मौसमों में झील का क्षेत्रफल बदलता रहता है और इसकी अधिकतम गहराई 5.5 मीटर है। मीठे पानी और अनुकूल परिस्थितियों के कारण जरीवार झील विभिन्न प्रकार की मछलियों के जीवन के लिए एक उचित स्थान है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण मछलियों में से व्हाइट फिश, कॉर्प और ब्राइट फिश का नाम लिया जा सकता है। ब्राइट फिश जरीवार झील की स्थानीय मछलियों में से एक है जिसका उच्च आर्थिक मूल्य है।
जरीवार झील अपनी उपयुक्त जलवायु, उल्लेखनीय वनस्पतियों, कई प्रकार की मछलियों, जल पक्षियों और एक उपयुक्त वातावरण के कारण एक विशेष सुंदर स्थान है। यह स्थानीय निवासियों और आसपास के शहरों के लोगों के लिए खाली समय बिताने का भी एक उचित स्थान है। गौरतलब है कि जरीवार झील का पानी सर्दियों में जम जाता है और झील के आसपास के गांवों के लोग इसके ऊपर से गुजरते हैं। इस तरह से ये बर्फ स्कीइंग के लिए भी उपयुक्त है। जरीवार तटीय पार्क झील के चारों ओर स्थित है, जिसमें होटल, सांस्कृतिक सेवा केंद्र और इसी तरह की सुविधाएं पर्यटकों के लिए मौजूद हैं।
दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अख्तर रिज़वी और स्वाति को इजाजत दीजिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताजा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम। नया सवेरा।
दोस्तों, कार्यक्रम नया सवेरा की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित है मरियम अर्तादी और मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए।
महान ईश्वर ने इंसान को सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाया है और महान ईश्वर ने जो क्षमताएं व योग्यताएं इंसान को दी हैं, वो उनका सही लाभ उठाकर जमीन पर उसका प्रतिनिधि भी बन सकता है। स्वाभाविक रूप से इंसान हर क्षेत्र में कमाल व परिपूर्णता का इच्छुक होता है। अगर इंसान सही रास्ते का चयन करता है और परिपूर्णता तक पहुँचने के लिए प्रयास करता है तो उसे उसके परिश्रम के अनुसार फल मिलता है। परंतु जब इंसान रास्ते के चयन में गलती करता है तो उसका परिणाम भी इंसान के लिए अच्छा नहीं होता है।
महान ईश्वर ने इंसान को बुद्धि दी है, पवित्र प्रवृत्ति दी है और 1,24,000 पैगंबरों को भेजकर इंसानों की मदद की है ताकि इंसान सही रास्ते का चयन करके लोक परलोक में अपने जीवन को सफल बनाए। जो लोग ईश्वरीय धर्म इस्लाम स्वीकार करके आध्यात्मिक परिपूर्णता के मार्ग में कदम उठाते हैं, वास्तव में वे लोक परलोक के जीवन को सफल बनाने की दिशा में कदम उठाते हैं।
ऑस्ट्रेलिया की ताजा मुसलमान होने वाली श्रीमती क्रिस्टेन जेम्स इस संबंध में कहती हैं, इंसान की परिपूर्णता का मार्ग महान ईश्वर के आदेशों के प्रति नतमस्तक होने में है। वो कहती हैं, अगर आपके पास बड़ा घर हो, पैसा हो और बहुत सारे दोस्त हो तो ये सब चीजें आपको परिपूर्णता तक नहीं पहुंचा सकती। परंतु अगर आप पूरी निष्ठा के साथ ईश्वरीय आदेशों के समक्ष नतमस्तक रहें, तो आप वास्तविक परिपूर्णता तक पहुंचेंगे।
श्रीमती क्रिस्टिन जेम्स का ऑस्ट्रेलिया के एक गैर धार्मिक परिवार में जन्म हुआ था, परंतु महान ईश्वर ने जो इंसान को पवित्र प्रवृत्ति दी है और इंसान की प्रवृत्ति में महान ईश्वर की उपासना का रुझान पाया जाता है, इस बात के दृष्टिगत वो बचपन से महान ईश्वर के बारे में बहुत बातें करती और उससे प्रार्थना करती थी। जब वो स्कूल जाती है तो ईसाई धर्म की शिक्षाओं से अवगत होती हैं। स्कूल की पढ़ाई पूरा करने के बाद वो विश्वविद्यालय में जाती हैं तो यहूदी धर्म की शिक्षाओं का अध्ययन करती हैं, परंतु वो दोनों में से किसी भी धर्म को वास्तविक मार्गदर्शक नहीं पाती हैं।
ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिस्टिन जेम्स ने जो ईश्वरीय धर्म इस्लाम स्वीकार किया, उसका एक कारण शायद उनका अध्ययन और विभिन्न देशों में रहना है। उन्होंने ब्रिटेन के विश्वविद्यालय से लॉ और लिटरेचर में ग्रेजुएट किया है और कई विश्वविद्यालय में पढ़ाया भी है। इसी प्रकार अब तक उनकी कई किताबें और लेख प्रकाशित हो चुके हैं। वो अपनी यात्राओं के बारे में कहती हैं, यात्रा करना, अनुभव प्राप्त करना और अधिक जानना मुझे बहुत पसंद है। मैं ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्कॉटलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, स्पेन और अमेरिका और इसी तरह इंडोनेशिया और भारत जैसे पूर्वी देशों में पढ़ाने या रहने के लिए गई हूँ और इसी वजह से थोड़ा बहुत कई देशों में और वहाँ के लोगों की संस्कृतियों और रहन सहन से अवगत हूँ और शायद इन्हीं अनुभवों के कारण मैंने इस्लाम धर्म स्वीकार करने का पक्का इरादा किया।
पवित्र कुरान और इस्लामी रिवायतों में यात्रा करने और ज्ञान अर्जित करने की बहुत सिफारिश की गई है। जो इंसान यात्रा करता है और विभिन्न स्थानों के लोगों की परंपरा और सभ्यता से अवगत होता है, उसकी सोच में और उस इंसान की सोच में जो आमतौर पर कहीं नहीं जाता है, बहुत अंतर होता है। ऑस्ट्रेलियाई महिला श्रीमती क्रिस्टिन जेम्स ने जो विभिन्न देशों की यात्रा की है और इस यात्रा के परिणाम में उन्हें लोगों की सभ्यताओं व संस्कृतियों का काफ़ी ज्ञान है, इसी बात के दृष्टिगत वो इस परिणाम पर पहुंचे कि इस्लाम धर्म की शिक्षाओं के बारे में भी अध्ययन करना चाहिए।
इस आधार पर वो इस्लाम, पवित्र कुरान और पैगम्बर इस्लाम की पावन जीवनी का अध्ययन आरम्भ कर देती हैं और इस ईश्वरीय धर्म की शिक्षाओं का गहन अध्ययन करती हैं और वो अपनी खोई हुई चीज को इस्लाम में पा जाती हैं, यानी उन्हें लोक परलोक में सफल जीवन का मार्ग मिल जाता है और वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाती हैं। इस संबंध में वो कहती हैं, जब मैं कलमा पढ़ रही थी तो मेरा ध्यान इस ओर गया कि मैं ईश्वर के एक होने को स्वीकार कर रही हूँ और उसे वचन दे रही हूँ।
ये वचन वही महान ईश्वर के आदेशों पर अमल करना है और इसी में इंसान का लोक परलोक का कल्याण निहित है। ऑस्ट्रेलियाई महिला श्रीमती क्रिस्टिन जेम्स आस्था के बारे में इस्लाम धर्म के विभिन्न संप्रदायों की शिक्षाओं का अध्ययन करती हैं और वो इस परिणाम पर पहुंचती हैं कि पैगंबर इस्लाम के पवित्र परिजनों की जो शिक्षाएं हैं वे सबसे अच्छी और तार्किक हैं। इस बात के दृष्टिगत वे शिया हो जाती हैं और डॉक्टरेट का अपना थीसिस शिया संप्रदाय की सही पहचान के बारे में लिखती हैं।
क्रिस्टिन पैगम्बर इस्लाम की उस हदीस व कथन को भी पढ़ती हैं जिसमें आपने फरमाया है कि मैं दो मूल्यवान चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, एक कुरान और दूसरे अहले बैत। अगर इन दोनों से जुड़े रहोगे तो कभी भी गुमराह नहीं होगे। इस बारे में वे कहती हैं, मैंने कुरान से सीखा कि जिस रास्ते का चयन मैंने किया है उसके सही होने के प्रति विश्वास हासिल करूं और सीधा रास्ता ही लोक परलोक में कल्याण का कारण है। इसी प्रकार हमने कुरान से ये सीखा कि हमारे सामने कुछ आदर्श हैं जिनका हमें अनुसरण व अनुपालन करना चाहिए। कुरान वो किताब है जिसकी समस्त बातें शिक्षाप्रद हैं और ये वो चीज़ है जो इंसान के विश्वास और भरोसे को कई बराबर कर देती है।
ईश्वरीय धर्म इस्लाम की एक विशेषता ये है कि वे लोगों को एक दूसरे के साथ भाईचारे का व्यवहार करने का आदेश देता है। पवित्र कुरान मोमिनों को एक दूसरे का भाई बताता है और उनके मध्य प्रेम को ईश्वरीय नेमत बताता है जिसे महान ईश्वर ने प्रदान किया है। पवित्र कुरान के सूरह फतह के अंत में हम पढ़ते हैं जिसमें महान ईश्वर कह रहा है कि मोहम्मद ईश्वर के दूत हैं और जो लोग उनके साथ हैं वे काफिरों के मुकाबले में सख्त हैं जबकि आपस में मेहरबान व कृपालु हैं।
ऑस्ट्रेलिया की ताज़ा मुसलमान होने वाली श्रीमती क्रिस्टिन जेम्स इस्लाम धर्म की इस शिक्षा से प्रभावित होकर पश्चिमी संचार माध्यमों के झूठे प्रचारों की ओर संकेत करते हुए कहती हैं, इस्लाम के बारे में समस्त दुष्प्रचारों के बावजूद जो चीज़ मेरे लिए सबसे आकर्षक थी वो प्रेम व मेहरबानी थी। इस्लाम धर्म में पैगम्बर इस्लाम और उनके पवित्र परिजनों जैसी महान हस्तियाँ आदर्श हैं जो बहुत अधिक शक्तियों व समस्याओं के बावजूद लोगों के साथ बहुत ही सुशील व प्रेमपूर्ण व्यवहार करते थे। मैंने इस अवधि में ये सीखा है कि जितनी भी सख्ती और समस्या हो मुझे दूसरे लोगों के साथ अच्छा और प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए।
इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया की ताज़ा मुसलमान होने वाली महिला श्रीमती क्रिस्टिन जेम्स का मानना है कि इस्लाम की उच्च मानवीय शिक्षाएं इस बात का कारण बनी हैं कि इस्लाम के खिलाफ भारी पैमाने पर नकारात्मक प्रचार के बावजूद ईश्वरीय धर्म इस्लाम गैर मुसलमानों को अपनी ओर आकृष्ट करता है। वो मिसाल पेश करते हुए कहती हैं, मैं काफ़ी दिनों तक फ्रांस में थी। यद्यपि फ्रांसीसी आज़ादी की बात करते हैं परंतु वहाँ जातिवाद बहुत अधिक है। फ्रांस में काफ़ी पलायनकर्ता मुसलमान हैं और बहुत से फ्रांसीसी इस्लाम और मुसलमानों से प्रभावित होते हैं।
ये ऑस्ट्रेलियाई महिला पश्चिमी महिलाओं की समस्याओं और उनके अधिकारों पर ध्यान न दिए जाने पर खेद जताती और कहती हैं, पश्चिमी महिलाओं को बहुत अधिक समस्याओं का सामना है। पश्चिमी महिलाओं के बारे में जो लोक लुभावन प्रचार किए जाते हैं उन पर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए। पश्चिमी महिलाओं को काम वासना और आर्थिक हित साधन के रूप में देखा जाता है। पश्चिमी महिला इस धारा के साथ बड़ी हुई है कि उसे अपनी सुंदरता का प्रदर्शन करना चाहिए ताकि वो पश्चिमी समाज में दिखाई दे। पश्चिमी महिलाएं सजने संवरने और मेकअप करने पर घंटों समय लगाती हैं और ऐसे मॉडलों में खुद को दिखाने की कोशिश करती हैं जो उन्हें उनके मानवीय मूल्यों से दूर करते हैं और वे सोचती हैं कि इस तरह वे दूसरों के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित कर सकती हैं ताकि समाज में उन्हें सफल महिला के रूप में देखा जाए। इसका अर्थ यह है कि पश्चिमी महिला के लिए सीमितता है और वो एक प्रकार के बंधन में है।
ऑस्ट्रेलिया की ताज़ा मुसलमान होने वाली महिला श्रीमती क्रिस्टिन जेम्स पश्चिमी संचार माध्यमों के उस दुष्प्रचार की ओर संकेत करती हैं जिसमें कहा जाता है कि इस्लाम महिलाओं के अधिकारों का विरोधी है। वो बल देकर कहती हैं कि इस ईश्वरीय धर्म में महिलाओं के अधिकारों पर ध्यान दिया गया है। मैं एक पश्चिमी महिला हूँ और पश्चिमी समाज की संस्कृति में पली बड़ी हूँ। अगर इस्लाम महिलाओं पर अत्याचार करता और उसकी सीमितता का कारण बनता तो मैं कभी भी मुसलमान न होती। इस्लाम महिलाओं को महत्व देता है और इसके लिए ऑस्ट्रेलियाई महिला श्रीमती क्रिस्टिन जेम्स इस्लामी गणतंत्र ईरान का उदाहरण देती है और कहती हैं, अगर इस्लाम महिलाओं पर अत्याचार करता तो आज ईरान में इतनी पढ़ी लिखी व शिक्षित महिलाएं न होतीं। आज ईरान में लाखों महिलाएं मिल जाएंगी जिन्होंने विश्वविद्यालयों में शिक्षाएं ग्रहण की हैं और कर रही हैं।
वो आगे कहती हैं, मेरा मानना है कि मुसलमान महिलाओं को जो आज़ादी है वो पश्चिमी महिलाओं को नहीं है। उन पर अत्याचार किए जाते हैं और वे सीमितता में हैं। रोचक बात यह है कि इस्लाम धर्म स्वीकार करने से पहले श्रीमती क्रिस्टिन जेम्स हिजाब करती थीं क्योंकि उनका मानना है कि एक महिला को अपनी रक्षा के लिए हिजाब करने की जरूरत है।
ऑस्ट्रेलिया की ताज़ा मुसलमान होने वाली श्रीमती क्रिस्टिन जेम्स ने अपना नाम जैनब सानी रख लिया है। वो पैगंबर इस्लाम के पवित्र परिजनों को सर्वोत्तम आदर्श मानती हैं और कहती हैं, पैगंबर इस्लाम के निकट हज़रत अली अलैहिस्सलाम का जो स्थान है उसे मैंने जाना, और इस स्थान का सबसे बड़ा चिन्ह यह है कि पैगंबर इस्लाम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इसी प्रकार वो इस्लाम धर्म स्वीकार करने से पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके महा आंदोलन और उनकी कुर्बानियों से अवगत थीं। इस संबंध में वे कहती हैं, अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके वफादार साथियों की कुर्बानियां व शहादत न होती तो इस्लाम बाकी न बचता और वो मिट जाता। आज जो विशुद्ध इस्लाम हम तक पहुंचा है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का नतीजा है।
ऑस्ट्रेलियाई महिला श्रीमती क्रिस्टिन जेम्स ने अपना नाम ज़ैनबे सानी जो रखा है तो उसकी वजह यह है कि वो पैगंबर इस्लाम की नवासी हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से विशेष श्रद्धा व लगाव रखती हैं और उन्हें वो एक मुसलमान महिला के लिए परिपूर्ण व सर्वोत्तम आदर्श मानती हैं।
तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, अनुमति दीजिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, कार्यक्रम आपको कैसा लगा नया सवेरा, हमें इस बारे में बताइए। हमारा ईमेल आईडी है hindi@wsirib.ir। इसी के साथ रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा अब यहीं पर संपन्न होती है। आप सभी से अब हम अनुमति चाहते हैं। शुभ रात्रि, खुदा हाफिज़।